रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल, शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल।
वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है, हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है, संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है, खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है, सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है, बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योत जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है, वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है, इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है, वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है।
ओम शांति। तो बुद्धि थे, तो उद्देश्य थे, नवचेतना विश्वास थे, जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास थे। भक्ति में प्रार्थनाएं हैं भगवान से, बुद्धि दे, तेज दे, जो सत्य है, जो सुंदर है, निरंतर सर्वथा उसका लक्ष्य उसकी इच्छा निरंतर हृदय में बनी रहे ताकि आत्मा ऊंचाई में रहे जब तक इस संसार की सभी आत्माएं सुखी नहीं हो जाती तब तक कोई एक आत्मा सुखी कैसे हो सकती है। वन यूनिवर्सल माइंड, हर मन दूसरे मन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर वले आभाड़ जांचे होतयांसा सोभती सापड़े न वाट जानना होतयांसा सारथी। जिनका कोई नहीं, जिनका आकाश खो गया है, उनके हम आधार बने, सहारा बने। जिनका कोई भी नहीं, उनके साथी बने, उनका सपोर्ट बने। निरंतर जो इन संकल्पों में रमन करते हैं वो दूसरों की सेवा करते करते स्वयं की सेवा स्वतः ही कर लेते हैं। ये देना लेना है, ये बनाना खुद बनना है। ये दोनों उंगलियां सेवा पर है। शायद एक सुबह एक शाम चली होगी, एक ही दिन दो मुरलियां ये चली है। एक अत्यंत गरीब लकड़हारा था, उसके पास कितनी भी मेहनत करो पर कुछ नहीं मिलता था, उसे भूखो मरना पड़ता था। वो भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे कुछ दो, पर कभी कोई प्रार्थना सुनी नहीं गई। और चलते चलते उसे एक दिन एक साधु मिला, उसने कहा कि तुम भगवान के निकट हो, भगवान तुमसे बात करते हैं या तुम भगवान से बात करते हो, तुम मेरी एक फरियाद भगवान को सुनाओ कि मुझे भी कुछ दे दे। वो साधु कहता है ठीक है। और कुछ दिनों बाद वो साधु फिर उस लकड़हारे से मिलता है, तब वो लकड़हारा पूछता है क्या हुआ, तो साधु कहता है भगवान से बात हो चुकी है और भगवान ने कहा है कि तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है, केवल 8 वर्ष और तुम्हारे जीवन में केवल 5 बोरी अनाज है, इसलिए भगवान तुमको बहुत ही थोड़ा थोड़ा रोज देते हैं। वो लकड़हारा कहता है तुम भगवान से फिर मिलोगे? वो कहते हैं हाँ। वो कहते अगर फिर से मिले तो उससे कहना कि मेरे हिस्से का जो अनाज है वो एक ही साथ दे दे। साधु कहता है ठीक है। और अगले दिन उसके घर में वो 5 पूरी अनाज, और वो व्यक्ति वो जो कुछ उसके पास सामान आता है वो सब गरीबों में बांट देता है। पर अगले दिन देखता है कि वापस उतना ही अनाज, वो वापस सब बांट देता है, खुद थोड़ा लेता है पर अधिकतर जो बचा है सब बांट देता है। ऐसा कई दिनों तक होते रहता है। और एक दिन वो साधु फिर मिलता है तो ये कहता है कि आपने तो कहा था मेरे हिस्से में केवल 5 ही बोरी है अनाज की, यहां तो रोज ही आ रही है। और इतने वर्ष बीत गए, आपने कहा था केवल इतने ही वर्ष है। वो साधु कहता है कि तुम्हें जो मिला वो तुमने बांट दिया, जो जो तुमने पाया वो सब गरीबों को दे दिया, और इसी पुण्य की वजह से भगवान तुमसे बहुत खुश है, और इसलिए तुम्हारी आयु भी बढ़ गई और तुम्हें वो सब भी मिल गया जो नहीं था तुम्हारे पास। तो चाहे भक्ति में चाहे ज्ञान में, हर जगह पर दान का महत्व है। ये दोनों ही मुरलियां दान पर है, सेवा पर है। बाबा ने पूछा महारथी का क्या लक्षण है, निशानी क्या है, तो निशानी है एक ही, सेवा। विश्व परिवर्तन का आधार क्या है, तो आधार है एक ही, सेवा में बिजी रहना। यदि कार्य में व्यस्त हो तो भी मन में शुभ भावनाएं, यदि स्थूल सेवा नहीं कर सकते तो वाचा, यदि वाचा नहीं कर सकते तो मन में शुभ भावनाओं के संकल्प, मनसा शुभ भावना के संकल्प की सेवा, परंतु सेवा निरंतर चालू रहे। और सेवा भी कैसी, खुद की सेवा के साथ साथ दूसरों की सेवा, खुद अकेले की सेवा नहीं, दूसरों की भी सेवा, स्व की सेवा दूसरों की सेवा, इसका बैलेंस। अगर ये सेवा कर रहे हो और खुद में कोई कमी है, तो वो कमी भी जिसकी सेवा कर रहे हो उसके आशीर्वाद से या जो खुशी प्राप्त है उससे वो कमी मिट जाएगी। ये एक मुरली में कहा। दूसरे मुरली में, यदि तुम में किसी सब्जेक्ट में कमी है, कोई विशेषता कम है या कोई गुण कम है, परंतु तुम उसी विशेषता का दान करो, उसी गुण का दान करो, तो वो गुण वो विशेषता तुम में आ जाएगी। ये कितनी अद्भुत बात है। जिस गुण को हम अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी गुण का क्या करना, दान। अंदर से दुख है, भाषण किस पे करना, फिर निरंतर सामने सामने आ जाओ, निरंतर खुश कैसे रहे। अभी अभी कमरा बंद करके रो रहे थे, और स्टूडेंट के सामने कौन सा भाषण करो, रोना प्रूफ कैसे बने, इसकी 21 एकदम पुख्ता सॉलिड विधियां, एकदम जो कभी फेल ना हो ऐसी विधि। तो जो विशेषता की कमी है वो दो, जिस गुण की कमी है वो दो, जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो, ब्रह्मचर्य में कमजोर हो, भाषण किस पर दो, संपूर्ण पवित्रता, अखंड पवित्रता, धवल क्रांति, रिंचक मात्र भी अपवित्रता नहीं। तो बाबा ने कहा, तुम हो महारथी, तुम हो जिम्मेवार आत्मा, तुम हो महादानी। महारथी जिम्मेदार, तुम घोड़े सवार नहीं हो, तुम प्यादे नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो। ये बच्चों का काम है जो खेलते हैं खिलौनों से, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, खेलते हैं। उसी तरह जो प्यादे है, जो घोड़े सवार है, वो अपने संस्कारों के खिलौने से खेलते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, वशीभूत होते हैं, वशीभूत करते हैं। कभी साधारण पुरुषार्थी, कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी हार कभी जीत, ये सब बच्चों का काम है, तुम्हारा नहीं। ये महारथियों का काम नहीं, ये घोड़े सवार प्यादों का काम है, तुम हो जिम्मेदार। तो तुम्हारा काम क्या है, दूसरों की सेवा। तुम्हारा काम क्या है, सदैव समझो कि मैं सेवा की स्टेज पर हूं। जैसे उस स्टेज पर होते हो तो हल्कापन नहीं होता है, सीरियसनेस होती है, वैसे ही सदैव निरंतर ये सोचो कि मैं सेवा की स्टेज पर हूं। हर समय, हर श्वास, हर संकल्प सेवा, सेवा में बिजी रहो, सेवा में, दूसरों की सेवा में स्वयं की सेवा समाई हुई है, दूसरों की और स्वयं की सेवा का बैलेंस। और पहली मुरली में कहा दूसरों की और स्वयं की सेवा में निरंतर शुभ भावना भाव मन में यही भावना हो तो सेवा सेवा सेवा। याद की यात्रा भी तुम्हारी स्वयं की याद की यात्रा भी दूसरों की सेवा है। वास्तव में चार सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट एक ही है। ज्ञान ही योग है, योग ही ज्ञान है। योग ही धारणा है, धारणा ही योग है। सेवा ही ज्ञान है, सेवा ही योग है, सेवा ही धारणा है। सब सब एक ही है। ये G इक्वल टू Y इक्वल टू D इक्वल टू S, ये है नया फॉर्मूला। जी ही वाई है, वाई ही डी है, डी ही एस है। कौन फर्स्ट कौन सेकंड कैसे माने? सेवा ही योग बन जाए, योग ही सेवा बन जाए। धारणा ही सेवा है, सेवा ही धारणा है। तुम्हारी सबसे बड़ी धारणा तुम्हारी सेवा है। तुम्हारा ज्ञान ही योग है, तुम्हारा योग ही संपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण ज्ञान ही संपूर्ण योग है, और संपूर्ण योग ही संपूर्ण धारणा है, और संपूर्ण धारणा ही संपूर्ण सेवा है। एक तो सब समान है और सबकी सर्वोच्च अवस्था एक है। तो सब्जेक्ट कितने हैं? एक। नंबर वन पे कौन सा है फिर, और नंबर टू कौन सा है, और नंबर थ्री कौन सा है, और नंबर फोर कौन सा है? किसी दिन ज्ञान नंबर वन है, फिर दूसरे दिन साकार मुरली में आता है सारा मदार धारणा पर है, सारा मदार योग पर है, सारा मदार ज्ञान पर है, सारा मदार सेवा पर है। चार सब्जेक्ट है ही नहीं, एक ही सब्जेक्ट है। आठ शक्तियां है ही नहीं, शक्ति एक ही है। सात दिन का कोर्स है ही नहीं, एक सेकंड का कोर्स है, या एक सेकंड का कोर्स है ही नहीं, जीवन भर का कोर्स है। कोर्स तो चालू ही है। एक मुरली एक सेकंड में भी पढ़ के हो सकती है, तो एक ही मुरली के लिए पूरा जीवन लग सकता है। भागवत कथा करने वाला एक पंडित राजा के महल में पहुंचता है और कहता है मैंने कई वर्षों तक भागवत का अध्ययन किया, मैं चाहता हूं कि मैं आपको भागवत सुनाऊं। राजा कहता है अभी तुम खुद नहीं समझे हो, पहले खुद समझो फिर आओ। उसे बहुत बुरा लगता है अंदर से, पर राजा के सामने कौन क्या कहेगा, चुपचाप अपमान को पी जाता है और फिर भागवत खोलता है। कहता है ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, ये तो मुझे पूरा कंठ है, एक एक स्टोरी सब भागवत का सब कुछ पता है, इसमें पढ़ने का क्या है। फिर भी राजा ने कहा है इसलिए पढ़कर, फिर कुछ समय बाद फिर जाता है, कहता है मैं पढ़ चुका हूं, मैं फिर आया हूं, क्या आप तैयार हो भागवत सुनने के लिए, मैं आपको सुनाना चाहता हूं भागवत कथा। राजा कहता है कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो, जाकर फिर पढ़ो। ऐसा कई बार होता है, उसे लगता है क्या है ये, राजा वैसे भी बूढ़ा हो रहा है, बुढ़ापे में यह सब होता है। फिर भी उसे लगता है कहाँ है राजा ने, तो जरूर कोई तो बात होगी। तो फिर से भागवत खोलता है और गहराई से पढ़ने लगता है, और पढ़ते पढ़ते वो भाव अंदर प्रकट होने लगते हैं, वो गोपियों सी भावना अंदर प्रकट होने लगती है, वो प्रभु प्रेम, वो आनंद, और धीरे धीरे वो कमरे में ही बंद होने बंद रहता है, बाहर भी नहीं निकलता है, दिन रात पढ़ते रहता है। ओतप्रोत प्रभु प्रेम से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं जब पढ़ता है तब भागवत, और वो जैसे एक हो गए। और कई वर्षों तक वो जब नहीं आता है तो राजा खुद उसके द्वार पर जाता है, आखिर हुआ क्या, तो देखता है बंद कमरे में वो, और भाव मग्न अवस्था है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, हे कृष्ण 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 कृष्ण। तब राजा कहता है, अब मैं आपसे भागवत सुनना चाहता हूं। ये मुरली ही गीता है और ये मुरली ही भागवत है। गीता में शिक्षाएं हैं, भागवत में शिक्षा प्लस कहानियां हैं, चरित्र और कहानियां दोनों हैं। तो उस एक ही मुरली को पढ़ने के लिए पूरा जीवन लग सकता है। एक ही लाइन, एक ही शब्द, एक शब्द में सारी मुरलियां समाई हुई है। वो कोई भी शब्द हो सकता है, वो शब्द ये भी हो सकता है फिर से, बस इतना ही। एक साकार मुरली पूरी इसी पर है, फिर से फिर से फिर से फिर से। एक शब्द में सारा ज्ञान निहित है, इतनी गहराई है उसमें। उस भाव में स्थित होकर उसे पढ़ना है। इस मुरली में बाबा ने नुमाश्याम को याद किया है। संध्या के समय संसार के लोग क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं संध्या के समय दिया? संध्या में दिया क्यों जलाया जाता है? संसार में भक्ति में क्या मान्यता है? पहले तो दिया प्रकाश किसका सूचक है? प्रकाश का। और अंधेरा अज्ञान का। और शाम के समय संसार का वातावरण कैसा होता है? रजो प्रधान, विकारी। उस समय घर के दरवाजे, मुख्य द्वार के सामने दीपक जलाना, अर्थात अंधकार को, विकारों को भगाना। शाम के समय किसका आगमन होता है घर में? साक्षात लक्ष्मी का। शाम के समय दिया जलाना वास्तु शास्त्र के अनुसार भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। नमस्कार करते हैं, गोधूली का समय, जब दिन समाप्त हो रहा है और रात आ रही है, उसके बीच का वो ट्वाइलाइट, वो समय। बाबा ने कहा है सूर्य को उस समय भी नमस्कार करते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो ये किसका यादगार है? तुम्हारा। ये तुमको नमस्कार कर रहे बाप ज्ञान सूर्य के साथ ज्ञान सितारों को नमस्कार किया जा रहा है। ऐसे नमस्कार योग्य तुम बने हो। इतने तुम श्रेष्ठ हो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, तुम जैसी श्रेष्ठ आत्माओं को जो विश्व के मालिक और ब्रह्मांड के मालिक बनते, बाप स्वयं नमस्कार करते हैं। इसलिए इस यादगार में संसार की आत्माएं तुम्हें नमस्कार करती है। ऐसे नमस्कार योग्य, नया शब्द है, नमस्कार योग्य तुम बने हो। तो हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जैसे बाप का तुम आह्वान करते हो, वैसे संसार की आत्माएं तुम्हारा आह्वान कर रही है। जैसे बाप के मिलन के लिए तुम कैसे आए हो, भाग भाग कर किस पक्षी की तरह? चातक पक्षी होता है, बाबा चातक कहते हैं मुरली में, पर उस पक्षी का नाम है चातक। वो चातक पक्षी होता है। सामने तालाब है, समुंदर है, पर वो पानी वो पीता नहीं। उसे कौन सा चाहिए? केवल बारिश का पानी, केवल वही पानी वो पीता है। उसकी चोंच यहां सिर से निकलती है, ऐसा वो पक्षी है। हार्बिंगर ऑफ रेनी सीजन, बारिश अब आने वाली है, उसका वो सूचक है वो पक्षी। कालिदास ने इस पक्षी को फेमस किया अपने ग्रंथों में। वो सूचक है यर्निंग का, लॉन्गिंग का, इच्छा का, वो प्यास, मिलन की प्यास का। तो बाबा ने कहा वो तुम पक्षी हो और ये मिलन है बाप से तुम्हारा। जैसे तुम प्यासे हो, बाप भी प्यासा है। तो मुरली की शुरुआत कहां से है? पहली मुरली जैसे वो वैसे ये, फिर आह्वान और फिर शाम का समय, और जो लेट आए हैं उनके लिए लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। हाई जम्प क्या है? लास्ट ही फास्ट, वो एक ही पुरुषार्थ है, स्व की सेवा के साथ साथ दूसरों की सेवा। दूसरों की इच्छा पूरी करना ही स्वयं को इच्छा मात्र अविद्या बनाना है, पहला। दूसरा, देना ही लेना है। तीसरा, बनाना ही बनना है। बनाना ही बनना, देना ही लेना, और दूसरों की इच्छा पूरी करना ही इच्छा मात्र अविद्या बनना। दूसरों को देने से ही स्वयं संपन्न बनोगे, दूसरों को देने से ही स्वयं में जो कमी है वो पूरी होगी। तो देना ही लेना है, महारथियों का प्रथम कर्तव्य है देना, दान। समय दो, संकल्प दो, पर दो। मुरली, भक्ति में कई प्रकार के दान सुनाए हैं। गीता में तीन प्रकार के दान है, कौन से? गीता में वर्णित पहला सात्विक दान, दूसरा राजसिक, और तीसरा तामसिक। तामसिक दान अर्थात अपवित्र स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों को अनुचित समय पर जो दान किया जा रहा है वो है तामसिक दान। राजसिक दान अर्थात जिसने हम पर उपकार किया है उसको हम दान दे रहे, स्वार्थ से किया दे रहे दान। जहां दान दे रहे वहां पत्थर लगा रहे अपने नाम का, नेम प्लेट ऊपर, ये कमरा इनके द्वारा दान दिया गया है ताकि लोग याद रखे जब भी देखे किसने दिया है। पंखे पर भी नाम होते, शादी में बर्तनों में नाम लिखते हैं। अच्छा, मिस हो जाते सप्रेम भेंट। दादी जानकी का बर्थडे सेलिब्रेशन था हॉस्पिटल में, एक बार ढेर सारे गिफ्ट दिए सब लोगों ने बना बना के, इससे उस इसके द्वारा उसके द्वारा। फिर दादी यहां से सीधा फिर अगला उधर था ज्ञान सरोवर गई और वहां पे सब बांट दिया इधर का उधर। नहीं तो गिफ्ट जब मिलती है तब कैसे कुंडली मार कर हम उसके ऊपर बैठ जाते हैं। ये मुझे मिली है गिफ्ट, शर्ट मिला है, कपड़े मिले हैं, पहले मैं यूज करूंगा, बाद में कोई दूसरा। अगर हमें कोई चीज मिली है और वो कोई दूसरा पहले यूज कर ले हमारा दोस्त, तो कैसा दर्द होता है। यहां कोई मतलब नहीं है किसने क्या दिया है, बड़ी बड़ी गिफ्ट, छोटी गिफ्ट, नाम लिख लिख के गिफ्ट सब दे दिए। तो पहला दान है सात्विक दान, निस्वार्थ किया हुआ तो दान। दान और तीन प्रकार के हैं, मानसिक, वाचिक, कायिक। कायिक दान अर्थात शरीर द्वारा किए हुए दान, रत्न दे दिए, ये दे दिए शरीर, या सेवा दे दी काया द्वारा। वाचिक अर्थात अभय दान देना, किसी को कोई भयभीत है और आपके पास आया है उसको अभय दान दे देना, वाचिक दान। मानसिक दान, जो तुम ध्यान करते हो, पूजा पाठ, ये जो भी भक्ति में वो मन से जो शुभ भावनाएं उत्पन्न करते हो वो दान। और तीन प्रकार के, लघु दान, महादान और दान, वो मात्रा पर डिपेंड है कितनों को दे रहे। दीर्घ दान तो शांति दान। और चार प्रकार के, नित्य दान। नित्य दान अर्थात सुबह भी करो, दोपहर में भी करो, रात में भी करो। जैसे गाय है उसको चारा खिला रहे, कुछ तो दे रहे। मछलियां हैं तालाब में, वो आटा, वो बेचने वाले भी बन गए अभी, वो भी मिलता है आटा। नित्य दान, निरंतर दान देते ही रहना, देते ही रहना, देते ही रहना। नैमित्तिक दान, कोई विशेष समारोह है, एकादशी या फिर क्या क्या होते हैं भक्ति मार्ग में, पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, अलग अलग त्योहार है, नैमित्तिक दान, मकर संक्रांति वगैरह वगैरह जो दिन आते हैं नैमित्तिक। तीसरा काम्य दान। काम्य दान अर्थात किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए जो दान किया जाता है वो। और सर्वश्रेष्ठ दान है विमल दान, विमल अर्थात निस्वार्थ भाव से जो दान किया जाता है वो दान। दान और बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के महादान, कन्यादान, भूदान, वस्त्रदान, नेत्रदान, अन्नदान, गोदान, कपिलादान, गोदान, जमीन दान, भूदान, हाँ वो गाय, गाय का दान करना, गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान, वस्त्रदान, रत्नदान, अंगदान, ये सब दान है। तो ये दान देते रहना है। जीवन दान, विद्या दान सर्वश्रेष्ठ दान है, ज्ञान का दान, सरस्वती दान सर्वश्रेष्ठ दानों में एक गिना जाता है, अभय दान बहुत श्रेष्ठ दान में गिना जाता है, गुणों का दान, शक्तियों का दान, तो ये सारे दान है। तो नित्य दान होता रहे, कायिक वाचिक मानसिक दान होता रहे, सात्विक दान होता रहे, विमल दान होता रहे, निस्वार्थ होता रहे और अखंड होता रहे और सर्व सबसे महत्वपूर्ण गुप्त होता रहे, कानों कान खबर ना चले किसी को, हवा ना लगे ये हाथ का दिए हुए दान का, इस हाथ को भी खबर ना पता पड़े। गुप्त जितना दान होगा, जो अपने दान का ढिंडोरा पीटते हैं, उनका दान कच्चा फल है, जो दान तो करते हैं परंतु उसका नाम मान शान उसके प्रति मंशा वो है, प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, मान के लिए करते हैं, सम्मान के लिए करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, आडंबर के लिए, ढोंग के लिए करते हैं, वो दान तामसिक दान है, उससे फल प्राप्ति नहीं होती है। अपने दान को भी गुप्त रखना है, जैसे उस दिन कहा था अपनी पुरुषार्थ की योजनाओं को गुप्त रखना है, जैसे पपीता का फल जैसे पक जाता है तो उस पेड़ को ढका जाता है, नहीं तो कीट और पक्षी दोनों आक्रमण करते, उसी तरह जो गुप्त पुरुषार्थ की योजनाएं बनाओ, पुरुषार्थ की प्लानिंग करो, उसे क्या रखना है गुप्त, उसी तरह दान को भी क्या रखना है गुप्त। जितना दान गुप्त होगा उतना अधिक फल होगा, जितना दान गुप्त होगा उतनी आत्मा में शक्ति भरेगी, और जो दान आ रहा है उनका हम क्या कर रहे हैं, जो डोनेशंस आ रहे हैं, कोई माता डोनेशन दे रही है, 1 रुपया दे रही है, 2 रुपया दे रही है, कुछ भी दे रही है, कहाँ से दे रही हो, वो सेंटर कहीं पर छोटा सी गीता पाठशाला है, वो पहुंच पहुंच के मधुबन आ रहा है, तो वो जो दान दिया जा रहा है और जिसके पास आ रहा है, वो जिस चीज के लिए दान दिया जा रहा है उसी चीज के लिए वो खर्च हो, अपनी पर्सनल सेवा के लिए नहीं। और जो खर्चने वाले हैं वो पूर्ण ध्यान रखे, बाबा ने कहा इस बात में फुल अटेंशन, इसकी स्मृति स्वरूप बनो, जैसे एक बहुत बड़ा राजा होता है और बुद्ध का जो चीफ असिस्टेंट ब्राह्मणी आनंद सहायक, उसको वो 500 वो दे देता है, वो जो भिक्षु है उनके वस्त्र, भगवे वस्त्र 500, उसको क्या फर्क पड़ता है 500 दे 1000 दे, उसके पास बहुत है, वो दे देता है और वो उसे बहुत लालची है वो, और वो साथ में पूछता है अब इसका तुम कैसे करोगे उपयोग, दान देने के बाद ये पूछना नहीं होता है उसका क्या हुआ 1 महीने के बाद, मैंने जो दिया था बहन जी वो आप यूज कर रहे हो कि नहीं, जो 10,000 रुपये दिए थे पिछले मास मैं देख रहा हूं कोई सेवा नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, कुछ किया कि नहीं उसका तो आनंद कहता है वो अभी मैंने वैसे ही रखे हुए, वो पूछता है तुम क्या करोगे उसका, वो कहता है कि मैंने वो आपके पास जो जो रोब्स है, जो वस्त्र है वो रखे हुए, जब किसी भिक्षु के पास, अभी सबके पास सब वस्त्र है, जब किसी के पास नहीं होंगे तो फिर मैं उसे दूंगा। कहता है कि अच्छा, जब ये वस्त्र खराब हो जाओगे तो फिर क्या करोगे, ये जो पहनने के। वो कहता है कि फिर मैं उसका उपयोग बेडशीट के लिए करूँगा, खराब हो गए ना। बोलते जब बेडशीट खराब हो जाएगी तब क्या करोगे, बोलते मैं टॉवल के लिए यूज़ करूँगा, टॉवल के रूप में उसका काट के और उसको ठीक करके, जब टॉवल खराब हो गए तो हैंड टॉवल के रूप में यूज़ करूँगा, नैपकिन रुमाल की तरह। जब रुमाल खराब हो जाओगे तो क्या करोगे, फिर उसका जो पोछा के लिए साफ सफाई के लिए वस्त्र होता है उसके लिए यूज़ करूँगा। पोछा खराब हो जाओगे तो क्या करोगे, उसके जो धागे होते हैं वो दिए के लिए यूज़ करूँगा। इसे कहते हैं इकोनॉमी। वेस्ट नहीं करना है चीजों को, नहीं तो हम कितना वेस्ट करते हैं। तो और क्या है इसका, कहा मुरली में बाबा ने, इसका बैलेंस रखो, स्व की सेवा और दूसरों की सेवा साथ साथ हो और ये सेवा निरंतर होती रहे। खुद में जो कमी है वो भी खत्म हो जाएगी इससे, खुद में जो किसी सब्जेक्ट में किसी विशेषता में और किसी गुण में कमी है तो वो दो तो खुद में वो आ जाएगी। तो ये है निशानी किसकी, महारथी की। ये है लासो फास्ट जाने का पुरुषार्थ, सेवा अर्थात मेवा, यही है सफलता। ये पहली मुरली और छोटी सी मुरली है और दूसरी भी छोटी है और उसमें भी यही सारी बातें बार बार है। मुरलियों में आता है तुम हो खुदाई खिदमतगार, यू आर ऑन गॉडली सर्विस। तो इस सर्विस के लिए आज हम नए ऐसे 16 सूत्र देखेंगे, सेवाओं के 16 सूत्र क्या है, किस तरह से सेवा हो, सेवा में हम क्या करें। अब मुरलियों में तो कह दिया बाबा ने, मैं विश्व की सेवा पर हूं, मैं सेवा की स्टेज पर हूं, सेवा में बिजी रहना यही विश्व परिवर्तन का आधार है और माया से बचने का भी आधार है। खाली रहोगे तो क्या होगा, माया आएगी, कुछ ना कुछ होते रहेगा, कुछ ना कुछ खुराफत करते रहोगे, इसलिए खाली दिमाग शैतान आके बैठता है उसमें, डेविल, इसलिए बिजी रहना। पर कैसे, तो अभी हम वो देखेंगे। सबसे पहला सक्सेस इन सर्विस, ये बहुत पहले कभी बनाया था। पहला है स्टार्ट नाउ, ये सोचो ही मत कि हमने बहुत सेवा कर ली, ये सोचो ही मत कि हमने कितनी सेवा की, कितने कुमारों को कितनी कुमारियों को कितने भाषण दे दिए, कितने क्लासेस करा लिए, कितनी भट्टियां करा ली, कितने सेंटर खोल लिए, कितने प्रोग्राम्स कर लिए, कितने कोर्स करा लिए, कितने मेगा प्रोग्राम्स कर लिए, कितने फेस्टिवल्स कर लिए, कितने सेमिनार, कितने वर्कशॉप्स कर लिए, कुछ भी नहीं किया, जीरो। आज से सेवा चालू करते हैं, क्या सोचना है, आज से, नाउ, स्टार्ट नाउ। अभी तक कुछ भी नहीं किया, कौन सी सेवा की, वाचा की थोड़ी बहुत कर ली, कर्मना की कर ली थोड़ी बहुत कर ली, विश्व की हजारों लाखों करोड़ों आत्माएं हैं आज भी, हम सोचते हैं हम कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना कुछ कुछ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। वो मुंबई के दादा स्टेशन में जाके खड़े रहो उस भीड़ में, किसी को पूछो ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर किधर है, सुना है, देख क्या है ब्रह्मा, कौन सी ब्रह्मा कुमारी, उनको तो कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। कई बार हम लोग बाहर जाते हैं और सेंटर ढूंढते हैं तो आसपास के लोगों को भी पता नहीं कि सेंटर कहाँ है, मैं नाम भी नहीं सुना है। हाँ, तो ये ना समझो कि बहुत सेवा हो चुकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और अगर वाचा से बहुत कर लिया या कर्मना से भी बहुत कर लिया, परंतु मनसा की तो सेवा अभी भी बहुत बाकी है। मनसा को शक्तिशाली बनाकर मनसा किरणें फैलानी है विश्व में। क्या पूरे माउंट अबू की भी सेवा हो गई है क्या, बस कभी सेवा हुई कहाँ है, कुछ भी नहीं हुई है। और उस सेवा में सबसे बड़ा बाधा कौन है, तुम खुद। बाबा ने कहा ना, क्या करते रहते, बच्चों की तरह संस्कारों से खेलते रहते, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, खेलते हैं, वशीभूत होते, वशीभूत करते, धारणा करते, धारणा में फेल होते, यही करते रहते हैं। खुद में ही बिजी है, खुद के ही संस्कारों के साथ अभी तक चल रहा है युद्ध, युद्ध करते हैं। यह है बचकानी हरकतें, यह है घोड़ेसवार, यह है पयादे। तो सबसे पहले क्या सोचो, कुछ भी अभी किया नहीं है, आज से चालू करता हूं, एकदम नए सिरे से, अभी अभी जन्म लिया है, अभी अभी निकला हूं अंडे से बाहर, अभी अभी देख रहा हूं, अच्छा ये जगत है क्या, इसकी मुझे सेवा करनी है, अच्छा जीरो से स्टार्ट करना है आज से। ये पहली पॉइंट। सेकंड, अपग्रेड स्किल्स, खुद की सेवाओं को अपग्रेड करना है। हर शिवरात्रि में वही, हर दिवाली में वही प्रोग्राम, जो पिछले साल भी वही, उसके पिछले साल भी वही, नवीनता कोई अपग्रेडेशन। स्किल्स मतलब खुद को, जो खुद में जो स्किल्स है उसको अपग्रेड करो, नई नई चीजें सीखो, नई भाषा सीखो, टाइपिंग सीखो, कंप्यूटर सीखो, इमेजेस बनाना सीखो या लिखना सीखो, क्रिएटिव स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, कुछ तो नया जो आता नहीं है वो सीखो, चिंतन करना सीखो, बोलना सीखो, कुछ भी। वो तो बहुत जबरदस्त था, एक वीडियो भेजा था उन्होंने। तो स्किल्स, अपने में स्किल्स लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी स्किल्स मैं सीख सकता हूँ। एक्सरसाइज करना सीखो, एक्सरसाइज कराना सीखो, एक्टिविटीज करो, एक्टिविटीज कराना सीखो, नई नई एक्टिविटीज, ग्रुप एक्टिविटीज में क्या क्या कराया जा सकता है। सेंटर पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, कैसे नई नई एक्टिविटीज में उनको एंगेज करें, वो एक ही एक नहीं, सुनाने वाला भी सो रहा है, सुनने वाले भी सो रहे हैं। एंगेज करो, एक्टिवेट करो, एजिटेट करो, काम दो, होमवर्क दो, होमवर्क दिया तो दूसरे दिन क्लास खाली सेंटरों पर बड़ी मुश्किल से आ रहे थे, आना बंद तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, कोई ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो, कोई एग्जाम्स दो, कोई नई एग्जाम, ये मत सोचो कि हो गया सब कुछ, ताकि बिजी रहे, ये मत समझो कि बस हम तो ये सब हमको नहीं करना है, हम तो दिन रात याद बाप को, आत्मा समझ कर बाप की याद में कितना समय हो कुछ नहीं हो, हम सारे दिन पर मुरली पढ़ते बैठेंगे, कितना पढ़ोगे, ऊपर से जाने लगता है एक समय के बाद, मुरली से भी डिटैच होना होता है, टोटल डिटैच, सुबह हो गया ना अब उससे एकदम अलग हो जाओ और सेवा में आओ, एंट्री करो सेवा में, नहीं तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है ज्यादा पढ़ने से। सेवा चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, कुछ तो अलग चाहिए जो उससे एकदम अलग हो कुछ समय, कुछ खेल चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, सब चाहिए। तो अपने आप को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते जाना। तीसरा, जो भी सेवा करो उसमें कमिटमेंट कितनी हो, पूरी 100%, पूरा झोंक दो अपने आप को, पूरा डुबा दो अपने आप को, एक तरफ तो सेवा में पूरा 100% डुबा दो, और जैसे पूरी सेवा हो गई टोटल डिटैच, कोई मतलब ही नहीं है किसी से, बोलने की भी इच्छा नहीं, इतना मौन, कमिटमेंट मतलब उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति डेडिकेट, डेडिकेट कर दो अपने को, स्वाहा कर दो उसके प्रति, पूरा पूरा अर्पित कर दो उसके प्रति, कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, अब यही सब कुछ है, कुर्बान हो जाओ, वो और आप एक बन जाओ, बस पूरा द अल्टीमेट सैक्रिफाइस फना। तो इतना कमिटमेंट होना चाहिए उसके प्रति। बाबा ने कहा निरंतर सोचो, मैं विश्व की स्टेज पर हूं, मैं विश्व की सेवा में हूं, मुझे जो कुछ भी करना है, कुछ कर भी नहीं रहा हूं, मनसा कर्मना भी नहीं कर रहा हूं, वाचा भी नहीं कर रहा हूं, तो मनसा में तो कम से कम वो शुद्ध भाव उत्पन्न करो सेवा के, कि आपके संकल्प ही सेवा करे, जो भी आत्माएं आ रही है, जैसे संकल्प करो, वो जो टोल नाका है माउंट का, आज जो भी उसमें से अंदर आएगा उसको तीर लगेगा। संकल्प करो शाम को सेंटर पर जो प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें 10 डॉक्टर आ रहे हैं, 50 इंजीनियर आ रहे हैं या कोई लोग आ रहे हैं, वो सब यहां आते ही घायल हो जाए। ये ना करो कि जंगल में शिकार नहीं है। शिकार ही कहे कि जंगल में शिकार नहीं, कौन मानेगा? तो क्या करो, कमिटमेंट कैसी हो, फुल 100% कमिट कर दो अपने आप को। ऐसा ऊपर ऊपर से दिखावे वाली ढोंग वाली सेवा नहीं। सेवा तो कर रहे, ध्यान सारा घर पर है, फटाफट फटाफट समझा दिया, कुछ भी ग्रुप आया फटाफट फटाफट समझा दिया, जाओ आप। अगला, अनचेक्ड एरिया। कौन सी एरिया है जहां पर अभी तक हमने सेवा की नहीं है? अपने शहर का मैप निकालो और उसमें ढूंढो कहां कौन सा आईटी कॉलेज, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कौन सी एरिया है जहां पर हमने अब तक सेवा नहीं की है। डेज की लिस्ट निकालो, अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई, उसमें निकालो कौन सा डेज है, कौन सा डे आता है, डॉक्टर्स डे, लेबर्स डे, चॉकलेट डे, बहुत सारे डेज है, हर दिन का एक डे है, हाँ, मदर डे, फादर डे, और उस डे में एक प्रोग्राम करो सेंटर पर, ड्राइवर्स का डे, जो ऐसे संसार में पर्यावरण दिवस, अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, जो भी डेज है वो डेज की लिस्ट बनाओ और सोचो इस डेज पे क्या प्रोग्राम किया जा सकता है। बाबा कहते हैं स्नेह मिलन करो, कुछ तो करो। तो क्या करना है, अनचेक्ड एरिया, अनटैप्ड, अभी तक कौन से एरियाज है, कौन सी सेवाएं जो हमने की नहीं है। कोई कंपटीशन रखो बच्चों की, रंगोली कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप, अगर ब्लड आपका सेंटर बहुत बड़ा है तो हॉस्पिटल में जाओ, उस ब्लड डोनेशन वाली जो टीम है ब्लड बैंक की, उनको सेंटर पर बुलाओ, उनको बोलो यहाँ करना है। लायंस क्लब, लॉटरी क्लब, इनसे मिलो और ऑर्गेनाइज करो ब्लड कैंप, कहाँ पर, सेंटर पर, ट्री प्लांटेशन कैंप। ये सारा सारा अलग 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 एरियाज है, बहुत सी एरियाज है, समाज सेवा वाली जो एरियाज है ना उसको टैप करो जो की नहीं अभी तक। सोचते हमारे यहाँ लोग ही नहीं आते, लोग ही नहीं आते, सारा कुछ कर लिया क्या, सारा कुछ, संसार के बाहर के लोग देखो क्या क्या करते हैं, नई नई चीजें करते रहते हैं, नए नए ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम्स, जैसे ये मैराथन, ऐसी मैराथन उधर अपने तरफ ऑर्गेनाइज करो, कोई कंपटीशन, कोई मैराथन जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व करो, जिसमें ये आत्मा परमात्मा चीजें नहीं हो, हर जगह पर आत्मा परमात्मा को मत घुसेड़ो, लोग इसी से तो डरते हैं तुमसे, तुम्हारी इसी एक आदत की वजह से, जहां आते हैं पकड़ के आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, आ गए आत्मा परमात्मा। हमको याद है जब हम उधर सेंटरों पे थे तो गांव में जाते थे बहन जी के साथ, तो गांव वाले कहते थे ये आ गए आत्मा परमात्मा वाले इनको काम ही नहीं है दूसरा जब देखो तब डोज देते रहते वहां ओम शांति भवन के बाहर ही इंस्ट्रक्शन, ऊपर जाना चुपचाप आ जाना जल्दी, 15 मिनट में, 10 मिनट में, अगर कुछ पूछा तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। फिर शांति कैसे मिले, मेडिटेशन कैसे करें, बस ये एक शब्द पूछ लिया कि गए तुम तो, क्योंकि उनको अपना भी तो देखना होता है टाइम का, क्योंकि अलग अलग जगह लेके जाना है ना उन लोगों को। हाँ तो अनचार्टेड एरियाज, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, सोचो मैं क्या क्या कर सकता हूं, लिस्ट बनाओ, ढूंढो, इंटरनेट पे जाओ, लोगों से मिलो, तो आइडियाज आएगी, नई नई सेवा की आइडियाज होनी चाहिए। वो एक ही एक हमेशा अपने शिवलिंग ही बना रहे, वो कौन से, वो 12 ज्योतिर्लिंग, जब देखो तब वही। फिर यहाँ पे तो लोग गणेश उत्सव करते तो हर बार का गणेश अलग होता है, नवीन था। अगला चैलेंज, सेवा क्या है, एक चैलेंज है, इसको चैलेंज के रूप में लो, और इसमें ऐसी ऐसी सेवाओं को लो कि जो एकदम चैलेंजिंग है, ऐसी ऐसी जगह पर सेवा जहां आज तक बिल्कुल भी हुई नहीं है, इट्स अ चैलेंज, वो चैलेंज को ले लो, हम ऐसी जगह सेवा करेंगे, नई नई जगह जाओ, जेल में जाओ, वहाँ सेवा करो, हॉस्पिटल में जाओ वहाँ सेवा करो, वो वेटिंग रूम होता है हॉस्पिटल में पेशेंट्स के रिश्तेदारों का, वहाँ सेवा करो, ढूंढो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। रिक्शा वाले होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, नर्सेस होती है, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वकील होते हैं, वो हॉकर्स होते हैं, सब्जियां फल ये सब बेचने वाले होते हैं, बिजनेस छोटे छोटे दुकानदार, ये सब फोटोग्राफर्स, कुछ भी। पर सोचो क्या क्या किया जा सकता है। जब संकल्प होगा मन में तब वो टच ये आएंगे, वो टचिंग होगी, वो ही अपने आप आएगा, आकर्षित करेगा। क्योंकि महान जो आइडियाज है वो कैसे आती है, अचानक आ जाते हैं, कुछ देख के कुछ और याद आ जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारी सेवा का, पर वो देखकर एकदम स्ट्राइक हो जाता है, हाँ ये करना है। तो चैलेंज अगला, सेवा करते करते सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति, वहीं अभ्यास करो, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। आज नुमा शाम का योग है, आज थर्ड संडे है, थर्ड संडे था ही तो एक ग्रुप ही आ गया बीच में। आज विचार था कि बड़े अशरीरीपन का और बाबा की आंख यादों में आंसू बहाऊं थोड़ा योग में, और ग्रुप आ गया। तो वो करते हुए ही सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज, उसके बाद में प्रकाश, ये सबसे पावरफुल सेवा है। इसलिए रोज अमृत वेला, अमृत वेले का योग, वो चीजें फिक्स करके रखनी है उसमें। एक तो आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव, प्रभु प्रेम का अनुभव, परमात्मा परम धाम का अनुभव, सूक्ष्म वतन का अनुभव, सतयुग का अनुभव, द्वापर का, पांच स्वरूप और विश्व की आत्माओं को सकाश, पांच तत्वों को सकाश, अलग अलग स्थानों पर जाके पांच तत्व पांच खंड सब जगह जाना, यूरोप अमेरिका अफ्रीका एशिया ऑस्ट्रेलिया, एक इधर और हवा आकाश, ये सारा जो पांच तत्व है उन सबको सकाश, तो ये भूलना नहीं। उसके बाद में अगला, अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाना है। आप जिस शहर में रहते हो, जिस स्टेट में रहते हो, उसके जनरल नॉलेज की किताब मिलेगी एक, उसके बारे में पूरा पूरा पता रहना चाहिए। सबसे पुराना किला कौन सा है, सबसे बड़ा ये क्या है, सबसे फेमस चीज क्या है, उसकी जनरल नॉलेज, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ो। जैसे माउंट में रहते हैं तो माउंट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ो, जो जहां रहता है उसकी हिस्ट्री पढ़ो थोड़ी सी। जैसे माउंट में कहा जाता है वशिष्ठ आए थे वो वहां अचलगढ़, और वहां पर अग्निकुंड रचा और उधर से प्रथम अग्निपुरुष प्रकट हुआ राजपूत। दिस इज हाउ ऑल द राजपूत्स क्रिएटेड, अग्निपुरुष वहां से प्रकट हुआ था। तो ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं, ये कहानियां आपको कोर्स कराते समय और क्लास कराते समय काम आएगी, छोटी छोटी कहानियां, क्योंकि लोगों को कहानियां ज्यादा समझती है, लोगों को इतिहास अधिक प्रिय होता है। तो अपने जनरल नॉलेज को बढ़ाना है, आप जहां रहते हो वहां की पॉपुलेशन क्या है, वहां की भाषा क्या है, कैपिटल, फिर वहां के विशेष स्थान, ये सब बातें। अगला स्मार्ट, जो लक्ष्य रखोगे सेवा का उसमें ये स्मार्ट गोल, स्मार्ट अर्थात जो लक्ष्य रखा है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं मुझे तो विश्व की सेवा करे, क्या मैं विश्व सेवाधारी हूं, पर कौन सा क्या, स्पेसिफिक गोल रखो, स्पेसिफिक गोल, एक मास में हमको ये सेवा करनी है। जैसे संसार में कोचिंग क्लासेस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मेडिकल के एंट्रेंस की कोचिंग क्लासेस यूजी और पीजी, तो हर कोचिंग क्लास से पहले क्या होता है, एक वर्कशॉप होता है। तो जैसे अभी वर्कशॉप कराया, ये वर्कशॉप में थोड़ा सा बताएंगे और आधा जो है ना मेन हम बाद में बताएंगे। अभी जो मेन कोर्स है वो तीन मास का है, और ये तो वर्कशॉप है, इसको अटेंड करने ये फ्री है, या 99 रुपीज का है, इसको 600 लोगों ने अटेंड किया, और यहां पे क्या अनाउंस होते, जो अगले 6 घंटे में रजिस्टर करेगा उसको 50% डिस्काउंट, अगले 6 घंटे में जो रजिस्टर करेगा। ये कोर्स जो है वैसे 50,000 का है, पर आग अगले 6 घंटे में सेमिनार खत्म होने के बाद जो तुरंत रजिस्टर करेगा उसके लिए बस 30,000 का ये कोर्स है, और सीट हमारे पास लिमिटेड है। बस 5 ही सीट खाली है, ऑलरेडी भर चुका है। ये है टेक्निक्स, ये है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। हमारा 2400 घंटे खुला है, 7 दिन का कोर्स, कौन आता नहीं है। और देखते हैं कभी, अभी नहीं बाद में आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो विद्या जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है, परंतु ये सारी जो चीजें हैं ना ये जरूरी है, फ्री का कोई वैसे इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं होता है, इसी कोर्स को चार्जेस लगा दो थोड़े। ऐसी लोगों की मानसिकता है, ये गेट के वहीं लगा दो, ये जो गेट है ना हमारा सामने वाला, सुबह के 5 से 6 यहां आना मना है। क्यों आना मना है? आके देखे तो जाके क्या हो रहा है। तो क्या करना है स्पेसिफिक? तो वहां आ सकते हैं क्या? हाँ ऐसे पूछते हैं। तो ये ऐसा कुछ अट्रैक्शन क्रिएट करना है उसके प्रति, ये है कोर्स, वही है, उसको नया नाम दो आप, कॉन्सेंट्रेशन पावर, एग्जाम टेक्निक्स, एग्जाम पासिंग टिप्स, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर। बड़े शॉकिंग टाइटल चाहिए थोड़े। एक वो आपको भेजा था ना, एक वो एक टीचर ने अपना लगाया था बोर्ड, अगर मैंने सिखाए हुए प्रश्नों में से 70% नहीं आए तो फला फला चौक में मुझे जिंदा गाड़ देना। गारंटी। तो गोल स्पेसिफिक हो, गोल मेजरेबल हो, मेजर कर सको आप, गोल अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं हमारे सेंटर पर 100 लोग आ जाए 7 दिनों में, ये अचीवेबल गोल नहीं है। अचीवेबल गोल होना चाहिए, ये भी हो सकता है बट अचीवेबल। फिर उसके बाद में रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम स्पेसिफिक करो, 7 दिन में ये काम करना है, 8 दिन में करना है, 1 महीने में करना है। कुछ तो डाइट का कोई एक शिविर ले लो, डाइट का कोई शिविर कराओ, कोई भी शिविर कर सकते हो, एनीथिंग, डाइट अवेयरनेस, न्यूट्रिशन अवेयरनेस, कोई डिजीज ले लो, डायबिटीज ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, और किसी डॉक्टर को सेंटर पर बुला लो, उसका टॉक रखो, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, ये सब कुछ भी टॉक शो रखो, या प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर रखो, तो और ही ज्यादा लोग आते हैं, लोगों को प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये एक, उसके बाद में टाइम टेबल, समय सारिणी। अब जो सेवा हो उसकी एक समय सारिणी हो, इतने से, ऐसा नहीं कि मैं 24 घंटे सेवा करूंगा, वो तो है ही सेवा, पर सेवा भी तो वेराइटी वेराइटी है। टाइम टेबल बनाओ, फिर सेवा को क्या करो, एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि मर मर के दुखी हो के सेवा कर रहे हैं, करना पड़ता है, काम है, ड्यूटी है। कोई एक सेंटर था, उसमें एक भाई ने टीवी पर अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुना, गया तो कोर्स करने के लिए, तो एक बहन कहती है कि तुम करो, दूसरी बहन को, दूसरी बहन कहती है तुम करो, और दोनों का झगड़ा चालू हो गया, वो उसका कोर्स वहीं पूरा हो गया, वो निकल गया। ऐसा ना हो। ये सब होता है, कोई कौन है पहले, कौन सेवा, कौन आया कोर्स करने, वो भी तो देखते हैं। आत्मा को देखो बस, ये आत्मा है, दैट्स इट, बाकी और कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बीके नॉन बीके और गरीब अमीर ये ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक ही देखो, बस उसका कल्याण करना है। अगला, रिस्पॉन्सिबिलिटी से करो। बहन जी कहती है कि कल सुबह 6 बजे आ जाना, कुमार कहता है बिल्कुल बिल्कुल कल आ जाऊंगा 6 बजे। 6 बजे मोबाइल स्विच्ड ऑफ, फोन पे फोन लगा रहे, कोई पता लता कुछ पता नहीं, उसको कहा था कोई काम, कोई सेवा, कोई सामान लेके आना, कुछ नहीं, मोबाइल ही स्विच्ड ऑफ, और अगले दिन चुपचाप क्लास में आके भी बैठा है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, ये भी नहीं कि क्यों नहीं आया, पूछना पड़ता है क्या हुआ, सामने से कुछ नहीं, ये सब है।
रिस्पॉन्सिबल,
जिम्मेदारी से सेवा करनी है, नहीं है तो ना जी बोल दो और खत्म करो किस्सा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मत करते रहो,
हाँ जी करना और नहीं करना उससे, तो फिर विजुलाइज करो
अपनी सेवाओं को, अमृत वेला विजुलाइज करो, जो 7 दिन का कोर्स करा रहे हो, शाम को अगर कोर्स है तो आधा कोर्स सूक्ष्म वतन में हो, आधा इस धरती पर, उस आत्मा को सुबह ही अमृत वेला इमर्ज करो और उसे बाबू बाबा के प्यार का वहीं अनुभव करा दो, फिर जब उतरो धरती पर, फिर वो 8 बजे सुबह आ रहा है सेवा करना कोर्स के लिए। तो यहाँ तो बस ऊपर ऊपर से, मेन कोर्स ऊपर होना चाहिए, नीचे तो ऊपर ऊपर का शब्द। अगला, टोटल, उसमें क्या होना चाहिए, दूसरों का विजुअलाइज करना है, ये हो गया, इन्वॉल्व ऑल, ऐसा नहीं सब मैं ही करूं, अब मैं छुट्टी में जाऊं तो सेंटर बंद, सबको तैयार करो, दूसरों को इन्वॉल्व ऑल, सबका इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, सब कुछ मैं ही करूं मैं ही करूं मैं ही करूं नहीं, ये भी अहंकार है, ये भी जिद है। हाँ, सबको करने दो, तुम नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और ऐसा है ही, ऐसा हमारी इधर तो सबसे ज्यादा है ब्रह्म कुमारी में, इन्वॉल्व ऑल, सब इन्वॉल्व हो जाए उसमें, बहुजन वो नहीं, द मोर द मेरियर, ऐसी कहावत है, द मोर, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा, ऐसी सेवाओं में
तो सबको इन्वॉल्व करो, उसके बाद में सेवा में क्या हो,
क्रिएटिविटी हो, वही 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 नहीं करते रहना, क्या हो सेवा में, नवीनता लानी है, और नवीनता कैसे आएगी, एकांत में, नवीनता कैसे आएगी, मौन से, नवीनता कैसे आएगी, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, एकांत में चले जाओ एक घंटा और सोचो, संसार के लोग, एआर रहमान लिखता है कि जब मुझे नया म्यूजिक कंपोज करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एकांत में चले जाता हूँ, एकदम एकांत में, जहाँ कोई नहीं, सब भूल जाता हूँ कि ये म्यूजिक रिलीज होगा, फिल्म रिलीज होगी, मेरी प्रसिद्धि होगी, इनाम मिलेगा, कोई मतलब नहीं है किससे, मेरा प्यार केवल संगीत से है, बस उस संगीत में मैं डूब जाता हूँ, उसी तरह उस सेवा में, उस सेवा के संकल्प में मैं विश्व सेवा के लिए हूँ, मैं विश्व सेवा की सीट पर हूँ, मुझे कैसे मैं इस संसार की आत्माओं को डूबने से बचाऊं, क्या करूं मैं जो इस संसार की आत्माओं को, हम बाहर जानवायचे दुख दुर्बलांचे दुखानी वेदना तेवता राहो सदा रंध्रातुनी संवेदना धमनात्या रुधिरासया खल भेदनाची आसदे सामर्थया शब्दास आनि अर्थया जगन्यासदे तू बुद्धि दे तू तेज दे, कि कैसे मैं इस संसार में डूबती हुई आत्माओं को बचाऊं, क्या करूं, ऐसी तीव्र भाव, तीव्र भावना अंदर हो एकांत में, तो वो एकदम सीधा सबकॉन्शियस में जाती है और नए विचार आएंगे कि क्या नया किया जाए,
तब क्रिएटिविटी आएगी। और लास्ट पॉइंट,
इकोनॉमी, सेवा में क्या हो, इकोनॉमी, ऐसी नई चीजें हैं पड़ी हुई है, वेस्ट जा रही है, इतना सारा भोजन बना दिया वेस्ट, उसको सफल करना है, हर चीज को सफल करना है। तो ऐसी ये कितनी बातें हो गई, 16th, तो ये दोनों मुरलियाँ छोटी है, बस आपको इसके ऊपर और कुछ चिंतन चलता है तो यही होमवर्क है आज का और कल एग्जाम है, ठीक है, वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए है, जो भेजे है पीडीएफ व्हाट्सएप पे ऑडियो, वो सब पढ़ना, और एडमिन को बार बार डिस्टर्ब नहीं करना है, बार 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 मैसेज भेज के, कंटिन्यूस नॉन स्टॉप एक एक दिन में 50-50 मैसेजेस आते हैं और उनको बहुत मुश्किल होती है फिर, जबकि सारे इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं और पढ़ते बिल्कुल नहीं, खाली प्रश्न पूछते रहते हैं। तू बुद्धि दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे सन्मार्ग आनी सन्मति नहीं आप ही आ जाओ लाभो सदा सत्संगति नीति नाही भ्रष्ट हो जरी संकटी आले किती पंखा सया बढ़ दे नवे झोपन्यास जयपनास आकाश।
ये किसने लिखा है, हाथ उठाओ, नाम आपका, भारत से, घाट को भारत से ही है ना, तो ये शैलेजा वैन जी हैं मुंबई घाट को ऊपर से, तो इन्होंने कुछ अपने मन के भाव व्यक्त किए हैं। ये दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया इस जमीन से आसमां पर बिठाया परम धाम में सजाकर मन मना भव का मंच दिलाया मेरे बाबा तेरा शुक्रिया शुक्रिया अपने शक्तियों गुणों से भरपूर किया ज्ञान रत्नों से सजाकर सज्जनी बनाया ये दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया तूफानों से लड़ना सिखाया तेरे जैसा अचल अडोल बनाया डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया अंधेरे से बच्चों को उजाले में लाया मेरे बाबा तेरा शुक्रिया शुक्रिया। माना आप ये सोच रहे हैं शैलेजा बहन पढ़ रही है अज्ञानी को ज्ञान से रूपवान बनाया दुर्बल को सबल बनाकर चलना सिखाया स्नेह प्यार पवित्रता की किरणों से भरपूर किया ये दिल कहे तेरा शुक्रिया शुक्रिया कलयुग की चरण सीमा से सतयुगी देवताए जीवन जीना सिखाया कोटों में कोई में कोई बच्चों को विश्व कल्याणकारी पद दिलाया मेरे बाबा तेरा शुक्रिया शुक्रिया। अब घर चलना है सतयुगी स्वराज्य स्थापन हो रहा है इस दुनिया में अब दिल नहीं लगता तेरे साथ चलना है सेकंड का पेपर है सबको पास होकर बाप के साथ पलकों पर बैठकर जाना है। थोड़ा बाबा तो करो, माता जी ने इतना प्यार से लिखा हुआ है, कोई बोल नहीं रहे हैं। ये दिल कहे तेरा शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह हाँ, अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने अपनी जिंदगी तुझ पर निछावर कर दी, दुनिया से मुंह मोड़ के तेरी एक नजर से तेरे संग चल दी। अब तू ही मेरा साजन, मैं अपने साजन की, तू शिव मैं डैश पार्वती, तू शिव मैं पार्वती, तू राम मैं सीता तेरी, तेरे संग जीव संग रहूं और संग चलूं। वो सीता वाले रावण तो चला गया हुआ है। तू तुझ बिन अब चैन ना पाऊं, मेरे बाबा तेरा शुक्रिया शुक्रिया। कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं, प्यारा पवित्र चमकती महाज्योति, विश्व में तेरे जैसा कोई नहीं, कोई तुमसा नहीं कोई तुमसा नहीं, ये दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति।